श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, इस बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पूर्व सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज हमारे इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा से अपने सत्य वचन को लोगों तक पहुंचा रहा था और हमने यह भी देखा कि झूठे भविष्यवक्ता लोगों को झूठी दिलासा दे रहे थे। इतना ही नहीं, स्त्रियां भी ताबीज के माध्यम से लोगों को गलत राहों पर ले रही थी। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसराइल के प्राचीन यहेजकेल के पास आते हैं और परमेश्वर की वाणी सुनने का स्वांग करते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य के संतान, इन मनुष्यों ने तो अपनी मूर्तें मन में स्थापित की और अपने अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी हैं। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? और फिर वह यहेजकेल से कहता है कि उन्हें उत्तर दे। तो इससे पहले कि हम अब आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि हम अच्छे और भले लोग हैं, परंतु इसलिए कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर है। हम आज आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते हैं तो वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उस महान सच्चाई को वे देखने पाए। हाँ प्रभु, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, पीड़ित हैं, बीमार अवस्था में हैं, तनाव और दबाव में हैं, सताव में हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, उनकी सहायता करें, अपने वचन से आप बातचीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को यहेजकेल नबी के पुस्तक उसके 14 अध्याय से आरंभ करेंगे। इस अध्याय का विषय है मूर्ति पूजा के विरुद्ध भविष्यवाणी और यरूशलेम का निश्चित विनाश। मेरे प्रियो, अध्याय 14 दो भागों में विभाजित है। पहला है प्राचीनों की मूर्ति पूजा के विरुद्ध भविष्यवाणी का वचन और यरूशलेम के विनाश की निश्चितता। दोनों ही के आरंभ में वह कहता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। इसे हम पद 2 और 12 में पाते हैं। इस अध्याय में परमेश्वर यरूशलेम उजाड़ने ही के कारण को दे रहा है। यहां दिए गए सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। परमेश्वर आज भी देश देश को दंड देता है। जी हाँ, प्राचीनों की मूर्ति पूजा के विरुद्ध परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। इन पदों में यहेजकेल इसराइल के प्राचीनों को मन फिराव के लिए पुकारता है। हमने पुराने नियम और नए नियम दोनों ही भागों में देखा है कि मन फिराव परमेश्वर का संदेश है जो वह अपने लोगों को भेजता है। मन फिराव और परमेश्वर की ओर फिरो, यहाँ यहेजकेल भी इसी बात को कहता है। यहेजकेल के पुस्तक 14 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, फिर इसराइल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। ध्यान दीजिए कि ये जो पुरनिये हैं, प्राचीन यहेजकेल के पास आए। ओह, ये कैसे धर्मी जन थे! वे उससे परमेश्वर का वचन सुनने का स्वांग रच रहे थे, जैसे आज हाथ में एक बड़ी बाइबल लेकर के लोग आराधना में आते हैं और ऐसा दिखाएं जैसे कि प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। और ठीक उसी प्रकार से प्राचीन भी यहेजकेल के पास आए। तब हम आगे पढ़ते हैं यहेजकेल 14 अध्याय के 2 और 3 पद में, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में वे कह रहे थे, ओह भाई यहेजकेल, हम मूर्ति पूजक तो हैं नहीं। यह सच है कि उन्होंने मूर्तियां नहीं बनाई थी, परंतु परमेश्वर कहता है कि इन लोगों के मनों में मूर्तियां स्थापित हैं। शिमशोन भी परमेश्वर का जन कहलाता था और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था और उसकी शक्ति का स्रोत पवित्र आत्मा था। उसके सिर के बाल नहीं। एक दिन वह बाहर गया और लय व्यवस्था की पुस्तक 5 अध्याय उसके 17 पद से आगे हम देखते हैं कि उसे परमेश्वर की आत्मा के कूच करने का बोध नहीं हुआ। वह पाप के साथ खेल रहा था और साथ ही साथ वह परमेश्वर का नाजीर भी रहना चाहता था। आज कलीसिया में भी कितने लोग पाप से खेल रहे हैं और सोचते हैं कि वे बच जाएंगे, परंतु मेरे मित्रों वे बचेंगे नहीं। दंड अवश्यम भावी है। वे धर्म के कर्म कांड करें और बाहरी दिखावा बनाए रखें, परंतु उनके मन में मूर्ति है। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि वे पाखंडी हैं, वे उसका संदेश सुनने का स्वांग रचते हैं, परंतु मन से वे सुनना नहीं चाहते। जब वह मुड़ेगा तो वे उसकी पीठ के पीछे छुरा घोंप देंगे। यहेजकेल की पुस्तक 14 अध्याय के 4 पद में लिखा है, इसलिए तो उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इसराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यद्वक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। परमेश्वर कहता है कि वह इनको दंड देगा। प्रभु यीशु ने अपने समय के धर्म गुरुओं को ढोंगी कहा था और सबसे अधिक इस शब्द का उपयोग किया गया था। यहेजकेल इसराइल के प्राचीनों से कहता है, कैसी त्रासदी कि परमेश्वर उन्हें दंड देगा। परमेश्वर पाखंड को दंड देकर ही रहेगा। जब जब एक विश्वासी या कलीसिया सत्य से दूर होती है, तब तब परमेश्वर दंड देता है। यहेजकेल की पुस्तक 14 अध्याय उसके 6 पद में हम आगे पढ़ते हैं, इसलिए इसराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया था कि वे पाखंडी थे, उनके मन में पाप था, मूर्तियां उनके मन में वास कर रही थी। अब कोई शिमशोन के बारे में कहे, शिमशोन के साथ जो हुआ वह बहुत ही बुरा था। मैं तो उसके जैसा जीवन जीना नहीं चाहता कि मैं दंड पाऊं। मुझे खेद है कि आराधना में बैठे कुछ लोगों के जीवन में पाप हैं। वे पाप के फल का स्वाद लेते हैं। वे जिस बात का खंडन बाहर करते हैं, वही वे मन में करने की लालसा रखते हैं। हमारा यह पुराना स्वभाव है और बहुत बुरा है। परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ और मेरे पास आ जाओ। मेरे प्रियो, वह इसराइल पर अनुग्रहकारी है। वह उन्हें दिल के सच्चे होने का अवसर भी दे रहा है, परंतु वे सुनेंगे नहीं। तब हम देखते हैं कि यरूशलेम का निश्चित विनाश। झूठे भविष्यद्वक्ता अब यही कहते थे कि परमेश्वर यरूशलेम को बचा लेगा, क्योंकि वह उसका नगर है, वह उससे प्रेम रखता है। वह कहता है कि उसकी आंखें उस पर लगी हुई हैं। वे धर्मशास्त्र से ऐसे अनेक संदर्भ देते हैं। आज भी झूठे या झूठी शिक्षाओं के संदर्भ में 1-2 संदर्भ दिए जाते हैं। आप यहां वहां से कोई एक पद उठाकर उस पर शिक्षा आधारित नहीं कर सकते। आपको धर्मशास्त्र से संपूर्ण परिदृश्य को देखना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप झूठी शिक्षाओं को साथ नहीं देंगे। वे गलत थे और परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि यरूशलेम को दंड दिया जाएगा, अर्थात परमेश्वर न्यायी है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर पाप का दंड अवश्य देता है। यहेजकेल की पुस्तक 14 अध्याय उसके 12 और 13 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं। परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, यह नगर बलवा करने वाला है, वह मेरे विरुद्ध विद्रोह करता रहता है। मैंने उन्हें लौट आने का अवसर भी दिया, परंतु वे नहीं आए। परमेश्वर अटल है, वह जो कहता है वह पक्की बात होती है, दंड से बचा नहीं जा सकता है। सुनिए वह कैसा गंभीर है। वह आपके जीवन के प्रति भी गंभीर है। वह नहीं चाहता कि आप पाप में जीवन जिए, वह चाहता है कि आप दंड से बचाए जाएं। यहेजकेल की पुस्तक 14 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि यदि नूह भी उस नगर में होता तो वे उसकी बात नहीं सुनते। सोचिए कि नूह उनके लिए कैसी चेतावनी था, परंतु नूह के समकालीनों ने भी उसकी चेतावनी नहीं सुनी थी। यदि वह यरूशलेम में होता तो वे भी उसकी चेतावनी पर हंसते। मित्रों, नूह की नाव की खोज के प्रति कैसा जोश देखा जाता है, मैं तो आश्चर्य में पड़ जाता हूं। जी हाँ, आपके विचार में यदि नूह की नाव मिल गई तो कितने लोग परमेश्वर की ओर फिरेंगे? यदि नूह स्वयं आज उपस्थित हो तो कितने लोग उसकी बात सुनेंगे? वे उसे सिर फिरा और सठिया गया हुआ व्यक्ति कहेंगे। सिर फिरा होने का एक लाभ है कि आप अन्य अनेकों के समान चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कुछ लोग चक्कर काटते हुए भी अपने आप को महान समझते हैं। वे नूह की बात नहीं सुनते और दानियल की बात भी नहीं सुनेंगे, परंतु नबूकदनेस्सर दानियल की बात सुनता था। यह दानियल के लिए कैसी प्रशंसा की बात है। विश्व के प्रथम महाशक्त राजा के राजमहल में दानियल वास करता था। बेबीलोन वासी जानते थे कि दानियल परमेश्वर का जन है। परमेश्वर कहता है कि वे न तो नूह, न दानियल और न ही अय्यूब की बात सुनेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 14 अध्याय के 17 पद में लिखा है, यदि मैं उस देश पर तलवार खींच कर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूं। परमेश्वर कहता है कि वह इसराइल देश पर तलवार लाना चाहता है। वह नबूकदनेस्सर को वहां आने देगा कि वह उसे उजाड़ दे। यहेजकेल 14 अध्याय के 20 पद में हम पढ़ते हैं, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। मेरे मित्रों, उस नगर में नूह भी अपने परिवार को बचा नहीं सकता था। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। दानियल ने दो राष्ट्रों को बचाया, परंतु यदि वह यरूशलेम में होता तो वह भी उनकी सहायता करने में असमर्थ होता। यह एक कारण था कि परमेश्वर दानियल को वहां से निकाल लाया था। परमेश्वर की प्रजा तो उसकी बात नहीं मानती, परंतु एक अन्य जाति सम्राट ने उसकी बात सुनी और उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया। आज कितनी कलीसियाएं सच में परमेश्वर का वचन सुनती हैं? मेरे विचार में तो अधिक नहीं है। जी हाँ, यही तो एक कारण है कि परमेश्वर अपने वचन को रेडियो के द्वारा उन लोगों में पहुंचा रहा है जिन्हें अनेक विश्वासियों ने त्याग दिया है। मेरे प्रियो, यदि कलीसिया परमेश्वर के वचन को नहीं सुनती तो परमेश्वर दूरस्थ स्थानों में जाएगा जहां वचन ग्रहण किया जाएगा। दानियल यरूशलेम में सम्मान नहीं पाता, परंतु बेबीलोन में वह सबसे बड़ा नागरिक था, जहां राजा उसकी बात सुनता था। परमेश्वर उन मनुष्यों को सुसमाचार सुनाएगा जो उसकी वाणी सुनने के लिए तैयार हैं। क्या आज आप परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 14 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 15 से जारी रखेंगे। इसका विषय है दाखलता का दर्शन। अध्याय 15 फलहीन दाखलता का दृष्टांत है। दाखलता इसराइल के प्रतीकों में से एक है। यशाया अध्याय 5 में दाखलता का अर्थ इसराइल है। हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यशाया ने कहा अध्याय 5 उसके 7 में, सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इसराइल का घराना है। तो आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक 15 अध्याय उसके 2-4 पद। हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है! अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है! क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती है, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है? वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग से जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वह किसी भी काम की है? मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर एक अति उत्तम उपमा देता है। दाखलता का उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 में आज के विश्वासियों को दाखलता कहा है। प्रसंगवश उसके कहने का अर्थ था कि इसराइल अब दाखलता नहीं रहा। वह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 1 पद में हम इसे देखते हैं। और इस अध्याय में प्रभु यीशु उद्धार की चर्चा नहीं कर रहा है। मैं फिर पूछता हूं, दाखलता का उद्देश्य क्या है? केवल फल देना और कुछ नहीं। आप कोई भी फर्नीचर की दुकान में जाकर दाख की लकड़ी का सोफा नहीं मांगते हैं। दुकानदार आश्चर्यचकित हो आपसे कहेगा, वह तो किसी काम की लकड़ी नहीं है। जी हाँ, हमारे पास ऐसा कोई भी फर्नीचर या कोई भी तख्त या चौकी नहीं है। दाखलता केवल फल देने के लिए ही अच्छी है। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि दाखलता फल ना दे तो वह केवल जलाने के लिए ही उपयोगी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु कहता है कि विश्वासी फल ना लाए तो वह उद्धार से वंचित तो नहीं होगा, परंतु वह फल देने के स्थान से हटा दिया जाएगा। यदि मनुष्य फल ना लाए तो परमेश्वर अनेक रूपों में उसे हटा देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 8 पद में प्रभु यीशु कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे प्रियो, इसराइली फल नहीं ला रहे थे, अतः परमेश्वर ने कहा, यरूशलेम को जलाने की अपेक्षा अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मुख्य कारण यही था, उन्हें परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना था, परंतु वे निष्फल थे। उन्होंने अपने काम को पूरा नहीं किया। यदि विश्वासी होने के कारण आपको बड़ा सौभाग्य प्राप्त है तो आपका उत्तरदायित्व भी महान है। क्या आपने कभी अफ्रीका, चीन और रूस के नागरिकों के बारे में सोचा है, जिन्हें परमेश्वर का वचन सुनने का सौभाग्य कभी नहीं मिला है? यहां तक कि हमारे देश में भी कई लोग ऐसे जंगलों में रहते हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है। मेरे प्रियो, हमने उसका वचन सुना है, इसलिए हमारा उत्तरदायित्व भी बहुत बड़ा है। परमेश्वर आज हमसे आशा करता है कि हम फल लाएं। आज हमारे लिए प्रश्न है, क्या हम परमेश्वर के लिए फल ला रहे हैं? कहने का अर्थ यह है कि क्या हम परमेश्वर के वचन दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की सच्चाई को अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं? मेरे मित्रों, यदि हम वचन को नहीं पहुंचा रहे हैं, अर्थात हम आत्माओं को प्रभु के राज्य में नहीं जोड़ रहे हैं, तो निश्चय ही हम भी विनाश में हैं। क्यों ना हम परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को लाएं और प्रभु से कहें कि वह हमें सामर्थ्य दे। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस वचन के प्रकाशन में आप अपने जीवन को अवश्य जांचेंगे और आप परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके पाठकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं, उसके पाठकों
हट कर